நடுவர் நாகர் நந்த பஜுரே மன கோவிந்தா கோபாலா நட்டுவர் நாகர் நந்த பஜுரே மன கோவிந்தா ശ്യാമ സുന്ദര മുഖ ചന്ദ ഭജോര മന ഗോവിന്ദ ഗോപാല ശ്യാമ സുന്ദര മുഖ ചന്ദ ഭജോര മന ഗോവിന്ദ ഗോപാല நட்டுவர் நாகர் நந்த பஜுரே மன கோவிந்தா கோபாலா நட்டுவர் நாகர் நந்த பஜுரே மன கோவிந்தா கோபாலா सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा बड़ी है जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा जैसे नदियों में गंगा நட்டுவர் நாகர் நந்த பஜோரே மன கோவிந்தா நட்டுவர் நாகர் நந்த பஜோரே மன கோவிந்தா ग्वालन में कृष्ण बड़े हैं सब ग्वालन में कृष्ण बड़े हैं सब ग्वालन में कृष्ण बड़े हैं सब ग्वालन में कृष्ण बड़े हैं जैसे गगन में चंदा भजोरे मन गोविंदा जैसे गगन में चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा
भक्तजन मिले सब मंगल गावत भक्तजन मिले सब मंगल गावत जैसे भक्तों का मन शुद्ध भजोरे मन गोविंदा
से भक्तों का मन सोता मधुर मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा मधुर मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा मधुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा
शन्नो शन्नो धवत्कर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विश्वम् ऋतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मावतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपादवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं काशी विश्वनाथ भगवान
की जय।
भागवत भगवान
की जय।
व्यास जी महाराज
की जय।
सुखदेव जी महाराज
की जय।
प्रेमपुरी जी
महाराज की जय।
सद्गुरुदेव भगवान
की जय।
सब संतन
की जय।
कृष्ण कन्हैया लाल
की जय।
ओम नमः
पार्वती पते हर हर महादेव।
पूर्ण परब्रह्म जिसका व्यास जी ने विस्तार किया है वो पूर्ण परब्रह्म सत्यम परम, वह जो सत्य परमात्मा, उसी का ये जगत विस्तार है, उसी के अनेक अनेक अवतार हैं, उसी की अनेक अनेक लीलाएं हैं। आ वो पूर्ण परब्रह्म जिसका जन्म और उसका कर्म दिव्य है, दिव्य कर्मच में दिव्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म भी मेरा दिव्य है, जन्म कर्मच में दिव्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही परमात्मा जिसका जन्म भी दिव्य है और जिसका कर्म भी दिव्य है, वो परमात्मा कौन सा? वो सत्य परमात्मा। वही सत्य परमात्मा वो सत्य है, इसलिए कुछ ऐसे ऐसी लीला करता है, अपने को विपरीत भासता है। और यही तो प्रश्न किया था राजा परीक्षित ने कि परमात्मा तो समान सबको मानने वाले हैं, सुरद सर्वभूतानां। भगवान सबके सुरद हैं, सबके अपने हैं, फिर ऐसी लीला क्यों करते हैं? प्रश्न उठता है। प्रश्न है कि दैत्यों को मारते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, ऐसी लीला क्यों करते हैं? तो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा उस सत्य का संरक्षण करते हैं। सत्य का संरक्षण कैसे करते हैं? श्रीमद् भागवतकार ने नरसिंह भगवान का प्रागट्य करके उसको एक दिशा दी है, उसको पतलाने के प्रयत्न किया है कि भगवान कैसे अपने कर्मों के द्वारा जगत की रक्षा करता है और अपना जो सत्य स्वरूप है उसको प्रतिष्ठित करता है। नरसिंह भगवान जिनका अवतार होता है, ना वो सिंह है ना वो मनुष्य है, ऐसा अवतार ग्रहण क्यों किया? भागवतकार कहते हैं कि जो उनके सेवक हैं, सबसे पहले तो उनके सेवक प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, और ऐसा अवतार क्यों किया, ऐसा अवतार ग्रहण क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मा जी के वाक्य को भी सत्य प्रमाणित करना था। ब्रह्मा जी उन्हीं की तो है, वही तो ब्रह्मा है, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उसको भी सत्य करना था। और कहते हैं कि ये जगत में ऐसा क्यों उन्होंने भेदभाव किया? तो ऋषियों ने जिनको शाप दिया था, सनकादि ऋषियों ने जिन जय विजय को शाप दिया था, तुम जाकर के दैत्य बनो, उनका भी उद्धार करना था। चलो भगवान कितने कार्य कर रहे हैं, समस्त कार्य। तो दीपक का जो है ना, भगवान सब कार्य पूर्ण करते हैं, इसलिए भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। ना मनुष्य है ना वो पशु है, ब्रह्मा जी को वाक्य को भी यथार्थ किया, अपने जो सेवक थे उनका उद्धार किया और साथ साथ में अपने जो भक्त उसका उद्धार किया। इस प्रकार का एक ही कार्य में समस्त कार्य करता है भगवान। कार्य कारण रूप है, इसलिए भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान का कर्म भी दिव्य है, इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं। और उसी वाणी को, उसी बात को हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से। ये थोड़ी बात क्या, ये सत्य को समझने के लिए लोगों के पास थोड़ा समय का अभाव है और सत्य को समझाने की जो बुद्धि है या उनकी मनोदशा है वो समझते हैं कि सत्य को समझ के लिए क्या करेंगे लोग, क्योंकि उनको करना तो संसारी है। परंतु फिर भी हमें अपने आप को जानने का तो पूरा के पूरा अधिकार है। हमें कहना भी सत्य चाहिए, श्रवण करने की भी, सत्य श्रवण करने की भी हमें बुद्धि रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आप लोग धैर्यवान हैं कि इस सत्य बात को भी, क्योंकि सत्य कटु होता है, थोड़ा सा भारी होता है और भारी वस्तु सहन करने में थोड़ी सी शक्ति लगती है। जब बुद्धि होती है जो भारी वस्तु को न सहन नहीं करती है तब वो आंखें बंद कराती है, लेकिन यहां के लोग कोई आंख बंद नहीं करते, मैं देखता हूं यहां से। आंखें बंद करते इसलिए कि वो स्वरूप को हम अपने हृदय में धारण करें, इसलिए आंखें बंद करते हैं। करना चाहिए कि जो सत्य स्वरूप का जो वर्णन हो रहा है वो कैसे है, उसको अंतकरण में धारण करना चाहिए। इसलिए आप लोग उस सत्य का जब श्रवण करते हैं उसको अंतकरण में धारण करते हैं, इसलिए आप कदा कदा यदा कदा आप अपने आंखों को बंद करते हैं। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप नरसिंह प्रागट्य हुआ और उनकी स्तुति हुई, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, रुद्र ने की, वहां के जो लोग थे सब लोगों ने उनकी स्तुति की और ये दृश्य जो हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं नारद जी और उसका प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। देखो प्रसंग कहां से कहां आया, जो दृश्य युधिष्ठिर महाराज ने अपने राजस्व यज्ञ में देखा था वो समझ में उनको आया नहीं, इसलिए उसका प्रश्न किया नारद जी से, इसका तात्पर्य क्या है। और उसका उत्तर देते हैं नारद जी कि इस कारण से ये सब घटनाक्रम घटित हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि अब नारद जी से प्रश्न किया है तो कुछ और क्यों न प्रश्न किए जाए, एक प्रश्न के साथ में और प्रश्न करें। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भगवान मैं जो हम जैसे सामान्य लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। भगत छो तुम इच्छामि निर्णाम धर्म सनातनम वर्णाश्रमचारयितम यत् पुनान्विन्दरे परम। कहते हैं कि भगवान हम ये भी आपसे पूछना चाहते हैं कि जो हमारे जैसे व्यक्ति को जो संसार में रहते हैं उनको धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहां पर नारद जी बहुत सरलता से, लोग मुझे बोलते हैं कि आप बड़े सरलता से कथा कहते हैं, भगवान ही अत्यंत सरल है, भगवान कठिन है ही नहीं, परमात्मा कठिन है ही नहीं, परमात्मा बहुत सहज है। जितने आप सहज हैं, जितने आप सरल हैं, एक संत सरल होता है, जितनी माता अपने पुत्र के लिए सरल होती हैं, जितने गुरुदेव अपने शिष्य के लिए सरल होते हैं, सहज होते हैं, उतना ही परमात्मा सहज और सरल है। अब उसको समझने के लिए कुछ अपने मार्ग हैं। तो कहते हैं नारद जी कहते हैं कि जो सामान्य जन है उनको धर्म का पालन करना चाहिए। अब धर्म का स्वरूप क्या है, बार बार धर्म की बात आई है, जगदी क्षमा दमस्तोयम। धर्म के प्रधान मनुज ने महाराज ने कहे कि प्रधान जो है वो नौ उसके लक्षण हैं। पहले प्रथम स्कंद में आया जब धरणी माता ने, जब धरती माता ने, पृथ्वी माता ने धर्म के लक्षण गिनाया 39, और वही लगभग लगभग वही यहां पर भी कहते हैं कि जो मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। तो धर्म का आचरण क्या है? सत्यम दया तपः शौचम। सत्य है, दया है, तप है, शौच है। सत्य बोलने का प्रयत्न करना चाहिए जीवन में। अगर धर्म का थोड़ा बहुत पालन करना है तो मुझे नहीं लगता है कि युधिष्ठिर महाराज के अतिरिक्त संपूर्ण जीवन में किसी ने सत्य बोला है। कोई हो सकता है कोई सत्यवादी हो, फिर भी सत्य बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। जब आप सत्य बोलते हैं तो आपको एक ही बार सत्य बोलना पड़ता है। सत्य बोलने पर एक ही बार आपको केवल सत्य बोलना पड़ता है, परंतु उस सत्य को जब असत्य बोलते हैं उसको आपको बार बार उसको असत्य बोलना पड़ता है, और हजारों बार असत्य को सत्य बोलने पर आप उसको सत्य नहीं कर सकते। इसलिए एक ही बार सत्य बोलना चाहिए। और सत्य कैसे बोलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य कैसा बोलना चाहिए? मधुर बोलना चाहिए। और मधुर बोलने से तुष्यंत जंतवा, कहते हैं कि मधुर बोलने से लोग सुखी होते हैं, सरल उनको सुख प्राप्त होता है। इसलिए बोलते हैं कि वचने किम दरिद्रता, वचन में दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए। आपको किसी को अच्छा लगता है, आप कोई कुरूप हो उसको भी आप बोलेंगे आप तो आज बड़े सुंदर लग रहे हो, तो उसको खुशी होती कि नहीं होती? और अंदर कुरूपता और सुंदरता ऊपर से नहीं होती, ये समझना। कुरूपता तो हमारी दृष्टि है, सुंदरता हमारी दृष्टि है। सुंदरता और कुरूपता ये दृष्टि का कार्य नहीं है, आत्मा का कार्य है, जीव का कार्य है। इसलिए अगर किसी को आप संतुष्ट करते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, और किसी को आप पीड़ित कर रहे हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं। कितना ध्यान रखना केवल, इससे ज्यादा नहीं। धर्म का स्वरूप यही है, एक लक्षण है, आगे भी है। सत्यम दया, आप भीतर दया होनी चाहिए, करुणा होने के लिए, ये धर्म का स्वरूप है। आपके भीतर जिस दिन दया आती है, कोई दुखी प्राणी है और उसके प्रति आपको कोई ऐसा संवेदना होती है, तो उसको हम कैसे सुखी करें? हर जगत को आप सुखी नहीं कर सकते। जगत में दुखी प्राणी है, उनको सुखी करने का अभी तक बहुत प्रयत्न किया है, परंतु आप मानसिक विचार कर सकते हैं कि हम जगत को कैसे सुखी करें, इस पर दया करनी चाहिए। और ये तो हुआ बाह्य गुण। और फिर कहा गया है कि तप, जीवन में तप अवश्य होना चाहिए। जब चाहे तब खा लिया, जब चाहे तब सो लिया, जब चाहे तब अपना घूम लिए, ऐसा नहीं। जीवन में कुछ निश्चित अपनी क्रिया होनी चाहिए, जिसको तप कहा गया है। अगर जीवन में आपका जीवन आप बिल्कुल नियमबद्ध है, उसको भी तप कहा गया है। ऐसे तो बहुत से तप कहे गए हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितंजियत, अलग अलग तप होते हैं। वाणी का तप है, शरीर का तप है, अलग अलग भगवान ने तप की बात कही। परंतु आप जीवन में थोड़ा सा सत्कर्म करते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं, तो आप तप कर रहे हैं। आपको हिमालय में जाकर के तप करने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही रह करके अगर आप नियम और संयम से रहते हैं, आपके यहां अनेक अनेक प्रकार के भोजन बनते हैं, परंतु कितना उसको ग्रहण करना है ये आप पर है। हम लोगों के सामने बड़ी समस्या आती कभी कभी घर में, जो जब कभी जाना होता है ना किसी गृहस्थ के यहां भोजन करने के लिए, तो उनके लिए उत्सव होता है कि आज हमारे यहां पर संत आने वाले हैं और पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, और जो बनाना नहीं आता है ना आजकल इंटरनेट खोल लेते हैं। पहली तो माताएं तो बिना कुछ बताए, अरे नमक इतना इधर उधर नहीं होता था, परंतु आजकल नई पीढ़ी है ना, वो स्कूल ज्यादा जाते हैं, घर में कम सीखते हैं, और स्कूल में तो वही सिखाएंगे जो वहां पर सिखाया जाता है, पर इंटरनेट पर वो क्या बनाते हैं कैसा बनाते हैं। अब वो पूरण पोली बनाने के लिए पहले उसको पता लगे कि वो आटा ऊपर रखना चाहिए कि वो जो पूरण है वो ऊपर रखना चाहिए, पूरण पोली हुए ना पहले, तो पूरण पोली बनाते समय उसको पूछना पड़ता है माताजी से कि माताजी पहले ये जो पूरण होता है वो आटे में डालना है कि आटे के बाद में वो पूरण लगाना है। क्यों? क्योंकि आज कोई हमारे यहां पर आने वाले हैं विशेष अतिथि, उनको खिलाना है, और जब पूरण पोली बनती है तो उसमें फिर घी तो होना ही चाहिए। और किसी मारवाड़ी सज्जन के आकर चले गए, मुझे दाल बाटी बनाओ, है ना, बड़े बड़े वहां पर बाटी होनी चाहिए, और बाटी होती है शुद्ध देसी घी में, डुबो को खिलाते हैं। संत पहुंचता है और उसके बाद में उनको परोसा जाता है, और माताएं बोलती है कि महाराज हमने अपने हाथों से बनाया है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, हम संयम करना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि आज के दिन खा लो ना कोई बात नहीं। एक बार हम किसी डॉक्टर के यहां पर गए, हमारे साथ में एक सज्जन थे, उनको डायबिटीज थी, और डॉक्टर के यहां पर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर खीर बनी और उन्होंने परोसना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने डॉक्टर को पूछा, मुझे तो नहीं डायबिटीज, बाजू वाले को थी, उसने कहा कि मुझे डायबिटीज है, बोले आज के दिन खा लो, मैं गोली दे दूंगा, कल नहीं खाना। परंतु कोई कोई सज्जन होते हैं, कोई कोई ऐसे विचारक होते हैं, ये जब समस्या आती है ना उसका निदान निकाल लेते हैं। जब मीठा कहीं ना नहीं खाना होता है तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो आजकल लोग समझदार हो गए हैं, पहले के समय में तो लोग शादी विवाह में तो जब तक आग्रह पूर्वक नहीं खिलाते थे तब तक बोलते थे कि वहां आतिथ्य बराबर हुआ नहीं, और कहीं कहीं तो जब नहीं खाते हैं तो उनके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, और कुछ मेहमानों को उनको जबरदस्ती खिलाते, ऐसी पहले की प्रथा थी। और हमारे यहां संतों ने भी, कुछ विद्वानों ने कहा कि हां हां दद्यात, नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हूं दद्यात, हुंकार करने पर भी नहीं देना चाहिए, न दद्यात सिंह गर्जना, अरे अब नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जोर से सिंह जैसा गरजता है तब तो उस समय नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। परंतु ये तप नहीं है, कोई भी आपके घर में अतिथि आ जावे तो जितना उसको खाना है, खाने से अधिक खाने से दो वस्तु बिगड़ती है, एक भोजन बिगड़ता है और दूसरा शरीर बिगड़ता है, तो दोनों को नहीं बिगाड़ना है। अब जब शरीर बिगड़ता है तो मन बिगड़ता है, और मन बिगड़ता है तो आपकी सब क्रियाएं बिगड़ जाती है, इसलिए यहां पर तप करना चाहिए। और उसके साथ साथ में शौचम तितिक्षा क्षम दम आदि आदि अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, त्याग है, स्वाध्याय है। यहां एक स्वाध्याय की बात आई है, जब आप स्वाध्याय करते हैं, जब आप किसी शास्त्र को पढ़ लेना बात अलग है। धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय समयता युत्सव माम कहा पांडवा सेव किम कुरशावाशमिदम सर्वम जिंच जगत्याम जगंते भूजिता माग्रध कसचिद्धनम। हम ये मंत्र तो पढ़ लेते हैं, उसका भी पुण्य होता है, परंतु यथार्थ अर्थ क्या है वो स्वाध्याय से ही पता लगता है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय करते हुए फिर ये होने के बाद में यहां पर नारद जी कहते हैं कि जो प्रहलाद जी ने कहा था कि श्रवणम कीर्तनम चास्य, थोड़ा सा अंतर किया, स्मरणम महतोगत, उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं कि ये सामान्य लक्षण है धर्म के, इसको ग्रहण करना चाहिए। और कहते हैं कि हमारे यहां पर चार वर्ण हैं, उनकी विशेष धर्म है। ब्राह्मणों के लिए कहा समोदमस्तपा शौचम संतोष शांति राजवम, सम होना चाहिए, दम होना चाहिए। देखो जो ब्राह्मण आपके घर में आते हैं तो पेट भर के भोजन नहीं करके नहीं आते हैं। देखो आप लोग यहां पर देखते हैं, आपकी पहली पूजा करवाते हैं, देख रहे ना आप लोग यहां पर। मैं तो समझ रहा हूं कि हम लोग यहां पर दो तीन घंटा तो सतयुग में जीते हैं, यहां पर जो जी रहे हैं ना। अभी ब्राह्मण यहां से जा रहे थे बटोक, हमने कहा कि ये दो घंटा ऐसा लगता है कि हम कहीं सतयुग में जी रहे हैं। आपको लगता है कि कली कहीं यहां दिख रहा है कहीं पर? नहीं ना, नहीं दिख रहा है। तो ये ब्राह्मण जब घर से आते हैं तो तप पूर्वक, इनको कभी कभी सिखाने वाले एक अनंत लावर पहले आए यहां पर। हम लोग कभी कभी विदेश में साथ में होते हैं, आनंद लावर जी ये सब जानते हैं। ब्राह्मण कैसे होना चाहिए ये आपको देखना है, तो आज भी आपको देखने को मिलता है। सब ब्राह्मण एक जैसे नहीं है और हो भी नहीं सकते हैं। जिस ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं, हम लोग कभी कभी एक साथ में रहते हैं, बाजू वाले कमरे में वो रहते हैं, दूसरे कमरे में मैं रहता हूं, और प्रातः काल वो 3:30 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान संध्या के बाद में अपना नित्य पूजन करते हैं, देवाचन करते हैं, और प्रातः काल उठ करके 7 बजे 8 बजे जो वहां की पूजा होती है उसके बाद में फिर बैठ जाते हैं, और वो 1 बजे तक वो चलती है, और उसके बाद में वो फलाग्रहण करते हैं। ये तप है, वो शम है, दम है, तितिक्षा है, उससे क्या होता है, ये ब्राह्मण का धर्म कहा गया है। और वो ब्राह्मण को आप चाहे देखो, चाहे उनसे पूजा करवाओ, चाहे उनका दर्शन ले लो, चाहे उनसे आशीर्वाद ले लो, वो आपको फलित होगा। ऐसा जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मणों के यहां पर लक्षण बताए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय के क्या धर्म है, वो शूरता होनी चाहिए, धृति तेज होना चाहिए, चपलता होनी चाहिए। यहां पर ये क्षत्रिय के धर्म बता रहे हैं, और यहां पर वैश्य के धर्म बताए कि वहां पर वैश्यों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और अपने साथ में सबको लेके चलना चाहिए। और यहां पर हमारे यहां पर अब ये बात कहने में हम लोगों को संकोच होता है, परंतु अपने शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि जिनको हम समझते हैं, जिनकी बुद्धि शूद्र है, जिनके लक्षण शूद्र हैं, जो अहिंसा में नहीं मानते हैं, जो सत्य में नहीं मानते हैं, वो चाहे कोई भी हो वो शूद्र हैं। परंतु उनके लिए भी यहां पर लिखा गया है कि उनको सबकी सेवा करना चाहिए, और साथ साथ में परमात्मा का भजन भी करना चाहिए। और साथ में भैया थोड़ा सा कुछ बात चल रही होती, रहने दो भैया। तो ये जो धर्म बतलाए हैं, और साथ साथ में चार हमारे आश्रम हैं, एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो ब्रह्मचर्य को क्या करना चाहिए तो यहां पर बतलाया है, उसको थोड़ा बोलो बाद में बात। अरे भैया थोड़ा बाहर बाद में बात कर लेना। तो ये ब्रह्मचारी है, उसको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी कुले वसंत, ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में वास करना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जितने जो आप बालक देख रहे हैं ना, ये गुरुकुल में वास करने वाले हैं। गुरुकुल हैं कहां, वलसाड़ के पास में, आज स्वामी नित्यानंद जी आने वाले हैं, जिन्होंने इन सब बालकों को व्यवस्था की गई है, वहां पर शास्त्र अध्ययन की, भोजन की, निवास की, वहां पर अपने घरों में नहीं रहते हैं। तो इतना सुंदर वेद पाठ कर रहे हैं, उसका कारण है कि गुरुकुल में रह करके गुरु मुख से वेद को गुरु मुख से श्रवण करना चाहिए। अरे आप लोग जो वेद श्रवण करते हैं वो गुरु मुख से श्रवण किया हुआ वेद है। इस प्रकार ब्रह्मचारी को कहां रहना चाहिए? गुरुकुल में रहना चाहिए और वहां पर गुरु के आज्ञानुसार वहां पर उनका आचरण करना चाहिए, रह करके विद्याध्ययन करना चाहिए। और अंत में या तो गुरुकुल से जाने के बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए और उसके बाद में वानप्रस्थ और उसके बाद में संन्यास लेना चाहिए। अन्यथा अथवा ब्रह्मचारी से सीधे सीधे संन्यास की ओर जा सकते हैं। अगर लगा कि ब्रह्मचारी से अपने को गृहस्थाश्रम में जाने से क्या लाभ होगा, सीधे से संन्यास आश्रम ग्रहण करना है, तो सीधे सीधे सन्यासी बन सकते हैं और उसी में से हम लोग हैं। आपको उदाहरण दे रहे हैं, जो बाल सन्यासी होते हैं आपके यहां पर आने वाले, प्रायः जो स्वाध्याय कराने वाले जो विद्वान होते हैं उन्होंने गृहस्थाश्रम नहीं स्वीकार किया। और गृहस्थाश्रम स्वीकार करके कुछ सन्यासी आते भी हैं तो उनके वो जो संस्कार है वो जाते नहीं है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। उनको लगता है कि इतना ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। इसलिए दोनों प्रकार से, और वो एक होते हैं। फिर ग्रस्तों के लक्षण बताए हैं, वानप्रस्थ के लक्षण बताए हैं और सन्यासी के भी लक्षण बताए हैं। सन्यासी को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि नाशास्त्रे सुसज्जेत नोपजीवी न जीविका। कहते हैं कि सन्यासियों को करना चाहिए कि अपने किसी को बिना कष्ट दिए अपने जीवन को जीना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। और शास्त्र का अध्ययन इसलिए करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं। पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था, शास्त्रार्थ इसलिए हो धर्म की रक्षा हो, कोई न समझता हो, कोई अपने आप को विद्वान मानता हो और कुछ वो गलत लोगों को गलत मार्ग में चलाता हो, तो उनके लिए शास्त्र से उनको परास्त करना चाहिए। परंतु शास्त्रार्थ किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। उसका हमारा एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जहां से मेरी परंपरा है। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि मैं संन्यास आश्रम पार्ला से आता हूं, परंतु हमारी ये परंपरा चलिए कहां से, गंगा तट से, जिसका नाम सूरदेवी का बंगला है, 400 साल पुरानी संस्था है। और उस समय एक बड़े भारी विद्वान वहां पर रहा करते थे, बड़े भारी विद्वान। उनका जोड़ का कोई उस समय विद्वान नहीं था और एक बार उनको आमंत्रित किया किसी राजा ने और राज्य परिवार में गए। उन्होंने वहां पर चातुर्माश किया और उस राजा के पास में भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण राजगुरु उनके, वो भी बड़े विद्वान। वो विद्वान ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं तो इतने दिनों से राजा के यहां पर रह रहा हूं और ये फकीर आया, ये सन्यासी आया और अपनी विद्वता बता रहा है, इसको मैं परास्त करूंगा। थोड़ा सा विद्या का अभिमान आया और उन्होंने, हमारे जो गुरुदेव थे उस समय के, उन्होंने कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। कि बोले, ब्राह्मण देवता क्यों शास्त्रार्थ करते हो, हम क्या जानते हैं, हम तो केवल ब्रह्म की बात करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने थोड़ा सा आग्रह किया और आग्रह करने के बाद में कहीं थी उसे बची आयु, अच्छा चलो चलो आदो। उन्होंने आग्रह किया और वो संत जिनका नाम महेशानंद था, पहले महेश्वरानंद जी नहीं, महेश्वरानंद जी तो थोड़े दिन पहले हुए, वर्षों पहले, जब राजा थे। राजा तो आप कहां राजा रहे, अब राजगुरु भी नहीं, राजा भी नहीं रहे, केवल नाम रह गए। शास्त्रार्थ हुआ और संत तो संत होते हैं, उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती होती है, ब्राह्मण भी विद्वान होते हैं, परंतु वहां पर शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में वो जो राजगुरु थे वो परास्त हुए। थोड़ा उनको अपमान महसूस हुआ और राजा ने बड़ा संत का सम्मान किया और संत का सम्मान करने के बाद में उनको बहुत धन धान्य दे करके उनको वहां से विदा किया और वो संत गंगा तट पर आए और गुरुदेव के पास में आकर के उन्होंने कहा कि आज ऐसी ऐसी हमारे हमने एक सभा की और वहां पर मैं विजयी हुआ। गुरुदेव ने पूछा कि परास्त कौन हुआ, उन्होंने सब वहां की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि तुमने ये काम तो ठीक नहीं किया, तुम्हारा जो ज्ञान है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है, ये किसी को भी नीचे दिखाने के लिए नहीं है, किसी का अपमान करने के लिए नहीं है, तुम्हारा ये शास्त्र किसी काम का नहीं है। गुरुदेव की बात लग गई, उन्होंने जितने शास्त्र थे जितने ग्रंथ थे गंगा में प्रवाहित कर दिए और उसके बाद में उन्होंने मौन धारण कर लिया। शास्त्र किसी को अपमानित करने के लिए नहीं है, इसलिए यहां पर कहा गया है कि वो दूसरे को किसी को वो कष्ट देने के लिए किसी को अपमानित करने के लिए वो शास्त्र नहीं है। ऐसा शास्त्र सन्यासियों को पढ़ना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए। इस प्रकार हर गृहस्थी को क्या करना चाहिए, अनेक अनेक प्रश्न किए हैं और उसका उत्तर समुचित उत्तर दिया है नारद जी ने। और इस प्रकार का आगे हम लोगों को भी आगे धीरे धीरे बढ़ना है, क्योंकि ये जो हमारे जो अनुष्ठान है ना, इसके कुछ बीच बीच में इसके कुछ आने वाले कुछ पड़ाव हैं, उन पड़ाव पर तक पहुंचना आवश्यक है। इधर उधर की बातें में है तो इधर उधर की बात नहीं, बात तो वही की है, लेकिन विस्तार देने से हम लोग संभवतः वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए पहुंचने के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा भगवान का संकीर्तन करें।
राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। माखन है बिहारी, राधा मेरी मिश्री माखन है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो 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 माखन है बिहारी, राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मुरली को तान है बिहारी, राधा मेरी मुरली तो 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 तान है बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी।
राजा प्रश्न करते हैं, राजा परीक्षित, बादरायनाते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् ग्राहस्ततमूचत। राजा प्रश्न करते हैं कि भगवान कथा आदेश है, वरेंद्र ने तैयार रख जो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले मैंने सुना है कि भगवान ने जो गज था, गजपति था, जिसको हम लोग गजेंद्र कहते हैं, उनको मृत्यु के से छुड़ाया था, इसलिए मैं वो कथा श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आशीर गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्वत, क्योंकि तीन शिखर वाला एक पर्वत था, ऐसा मैंने, वो भी सुखदेव जी महाराज, ऐसा मैंने सुना है, उन्होंने देखा, उनको उन्होंने भी नहीं था, ये हमारे यहां पर श्रुति कहते हैं, जो बात सत्य हो वो सुनी हो वो ऐसी कहते कि ऐसा मैंने सुना है, और उसके तीन शिखर थे, एक स्वर्ण का था, एक चांदी का था, और एक तीसरा होगा, ऐसे तीन शिखर वाला एक बड़ा सुंदर एक पर्वत था, और वहां पर लंबाई चौड़ाई उसकी बहुत बड़ी थी, और वहां पर एक बड़ा विशाल सरोवर था, उसका यहां पर नाम बता रहे हैं, तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः, उसके तलहटी में एक सुंदर एक सरोवर था, जिसका नाम जो वरुण देवता का, वरुण तो जल के देवता है, उन्होंने सरोवर बनाया होगा तो कितना सुंदर बनाया होगा। आपके यहां पर जब सुंदर आपके घर में कुछ आजकल अंदर ही होता है ना, क्या होता है, बाथरूम में शू हो नावा माटे टब, वो भी आजकल अनेक अनेक प्रकार के हुए हैं, नहीं होता तो होगा, बहुत लोगों के पास होगा। तो वरुण देवता ने कितना सरोवर सुंदर बनाया होगा, जो साक्षात उसी के देवता है, आप स्विमिंग पूल की बात नहीं कहेंगे, वो किसी किसी की बात होता है, होता है। तो वरुण देवता ने सुंदर, और वहां पर देवताओं की देवांगनाएं वहां पर स्नान करने के लिए आया करती थी, और उसी वन में एक बहुत विशाल बहुत शक्ति संपन्न एक वहां पर हाथी रहता था, जो गजेंद्र था, वो बहुत उसका विशाल काय वहां पर रोज रहता था, और एक दिन की बात है वो अपने परिवार के साथ में उस जल क्रीड़ा के लिए उस सरोवर में आया, और सरोवर में आकर के देखो हाथी को जल क्रीड़ा बड़ी ही अच्छी लगती है, तो जल क्रीड़ा के लिए वो जो गजेंद्र था वो वहां पर आता है, और आने के बाद में उसने उस सरोवर में प्रवेश किया, और सरोवर में प्रवेश करने के बाद में पहले तो जल पिया, और जल पीने के बाद में फिर तो उसके बाद में वो विहार करने लगा, क्योंकि उसके साथ में सब उसका परिवार था, हाथी थे, हथनिया थी, उनके बच्चे थे, पूरा के पूरा परिवार था, और वो उस समय वहां पर अंदर प्रवेश किया, और कहां तक प्रवेश किए कुछ पता नहीं, और भीतर प्रवेश करते 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 वहां पर एक बहुत बड़ा ग्रह रहता था, ग्रह रहता था। उसने सोचा कि हमारे लिए भी कोई ना कोई भोजन भगवान ने भेज ही दिया है, और उस ग्रह ने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, वहां चरण नहीं पकड़ा, क्या पकड़ा, उसका एक पैर पकड़ा, और एक पैर पकड़ करके उसको उसने खींचना शुरू कर दिया। ये गजेंद्र भी बड़ा बलवान था, बहुत बड़ा बलवान, उसने वहां पर दोनों का बड़ा भारी युद्ध होने लगा, और युद्ध होते होते बहुत समय तक युद्ध हुआ, परंतु जल में जलचर शक्तिमान होते, बलिष्ठ होते हैं। एक बार एक संत कथा कहते थे, एक बार नर्मदा के तट पर एक मगर ने एक आदमी को पकड़ लिया, और आदमी को पकड़ लिया, और वहां पर एक भैंस नहा रही थी, भैंस वहां पर, तो उसने भैंस की पूंछ पकड़ लिया, और भैंस भी जल में भी रहती है, बाहर भी रहती है, जल में भी तैर लेती है, और भैंस इतनी बलवान थी, उसने वो पकड़ के बाहर आया, बाहर ले आए, और वो पूंछ पकड़ के वो आदमी भी वो बाहर आया, और वहां पर कहा कि वहां पर छोड़ने के लिए कहा, उसने मगर ने उसको पकड़ के रखा हुआ था, अब वो पूंछ छोड़ता है, बोले छोड़ दो अभी भैंस को छोड़ दो, कहा कि भैंस को छोड़ दूंगा तो ये मगर मुझे फिर वापस ले जाएगा। लोगों ने कहा थे हम लोग हैं ना यहां पर, परंतु हमारे व्यक्ति का वहां पर, मनुष्य का काम वहां पर कम होता है। उसने कहा कि तुम छोड़ो, उसने भैंस के पूछ छोड़ दिया, और फिर वो मगर ले जाकर के उसको वापस लेके चला गया। जल में मगर की बड़ी शक्ति होती है, और वहां पर बहुत देर तक युद्ध होता रहा, और उस गजेंद्र के पैर को पकड़ करके उसको वहां पर उसको कुछ भोजन खाद्य भी मिलता रहा, वो बलिष्ठ होता गया, और धीरे धीरे गजेंद्र वहां पर दुर्बल होता गया, और दोनों का बहुत देर तक जब युद्ध हुआ, उस समय विचार किया गजेंद्र ने कि हे मेरे भाइयों आओ मुझे छुड़ाओ, हे मेरे बच्चों, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पत्नियों, देखो मैं संकट में फंसा हूं, मुझे जल्दी से जल्दी छुड़ाओ। लेकिन सब दूर से देख रहे हैं, हम भी जाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे, हम भी संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे वहां से लोग चलना शुरू कर दिए, जल से बाहर जाना शुरू कर दिए, और केवल अकेला रह गया। सब जिनको हम प्रिय मानते थे, उसने कहा कि जो मैं जिसको बहुत प्रेम करता था, उन्होंने तो मेरा साथ देना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे सब बाहर चले गए, और जब बाहर गए उसने विचार किया कि इसका मतलब है कि जिसने मुझे बनाया, जिसने जगत को बनाया, उसका कोई ना कोई उसका कारण होगा। उसने जल में से एक कमल निकाला, और अपने सुंड से एक, जहां उसको पता नहीं था कि कौन है, परंतु उसने भगवान के लिए अर्पित किया, और कुछ सुंदर गीत है।
हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। पिबल है तू गयो सिंधु के किनारे रवि बन ही तू गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत का चरण नहीं पछारे सिंधु बीच बसत का चरण नहीं पछारे चार प्रहर युद्ध गयो नहीं गयो मझधारे चार प्रहर युद्ध भयो नहीं गयो मझधारे चार प्रहर युद्ध भयो नहीं गयो मझधारे चार प्रहर युद्ध भयो नहीं गयो मझधारे नाक कान डूबन लाग कृष्ण को पुकारे 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे 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 शंख चक्र गदा पद्म नहीं बधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ नहीं सिधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ नहीं सिधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ नहीं सिधारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे 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 अब की बार पार करो नंद के दुलारे 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे
नारायण भगवान की जय।
उस सरोवर में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। एक कमल को निकाल करके अपने सुन में लिया और सुन में लेकर के उस परमात्मा की प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर बहुत सुंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यतय चितात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे परमात्मा हे ओम नमो भगवते तस्मै। कोई न कोई परमात्मा है, वो चितात्मक है, वो कहीं ना कहीं विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, इस जगत का मूल कारण वो परमात्मा जो बीज रूप से है उसका मैं ध्यान करता हूं। गजेंद्र इस प्रकार का ध्यान कर रहा है, यस्मिन्निदम् यदश्चेदम्, जो कुछ देख रहा है, जो कुछ दिख रहा है उसका कारण तुम ही हो, ये स्थिति का कारण आप ही हो, इस प्रकार का कोई ना कोई आप कारण होना चाहिए। और उसका उनका चिंतन करते हुए वो गजेंद्र भगवान की तरफ देख रहा है कि अब मेरा कोई उद्धार करने वाला होगा तो वही होगा जिसने संसार को बनाया है, क्योंकि संसार को तो हमें भी बनाया, हमारे साथ वालों को भी बनाया, परंतु वो समझते हैं कि हम किसी को क्या उद्धार कर सकते हैं। तो जो अपने आप को उससे अलग मानते हैं उन्होंने तो मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनका संबंध स्थायी नहीं था, संसार का संबंध स्थायी नहीं है। या तो संसार को हम छोड़े या संसार हमको छोड़ ही देगा, अंत समय में कोई भी नहीं जाता है। इस प्रकार ये परम सत्ता वाले, ये परम सत्तावान परमात्मा आप कोई ना कोई होंगे, उन्होंने देखा नहीं था कौन होगा, परंतु जिसने ये जगत को निर्माण किया और जगत को निर्माण करने के पश्चात वो जगत में प्रतीत भी होता है परंतु माया के कारण वो दिखता नहीं है, जिस प्रकार जो परमात्मा है आप स्वयं, आप स्वयं वो हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। और ये जो स्वर था वो वैकुंठ तक चला गया, और वैकुंठ में भगवान विराजमान थे, और जब कोई भक्त उनको पुकारता है तो भगवान सुनते हैं। भगवान के तो सहस्र शीर्षः पुरुषः, भगवान के अनेक मुख हैं, अनेक उनकी इंद्रियां हैं, समस्त है, सर्वत्र है। वो ऐसा नहीं कि कहीं वो सुनता नहीं है, हमारी भीतर की हमारी जो आवाज होती है उसको भी वो सुन लेता है, उसको बहुत ऊपर बोलने की आवश्यकता नहीं है। उस परमात्मा ने वहां पर सुन लिया और सुन करके तुरंत अपने गरुड़ को उन्होंने कहा कि चलो अपने को चलना है, और वो सरोवर की तरफ भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के पहुंचते हैं। और उस समय वो गजेंद्र जो सुंड में जो एक कमल का पुष्प था वो भगवान की तरफ अर्पण करता है, और जब भगवान की तरफ अर्पण किया भगवान ने विचार किया कि अब ज्यादा देरी करना भी उसको ज्यादा कष्ट देना नहीं चाहिए, और भगवान गरुड़ से उतर करके स्वयं पहुंच जाते हैं और अपने हाथ में जो चक्र है उससे उस ग्रह को वहां पर उसको ही उद्धार कर देते हैं, और उस समय दुख से निवृत्ति दे देते हैं गजेंद्र की, और उस समय गजेंद्र वहां पर सुखी होता है और फिर से वापस पुनः पुनः भगवान का चिंतन करने लगता है। इस प्रकार का जो ग्रह से गजेंद्र की वहां पर मुक्ति कर दी, एक सुंदर ये प्रसंग है। यहां पर जो जो अपने यहां पर कहते हैं कि किसी को कष्ट आया हो ना, संसार में बहुत से लोग बोलते हैं जो गजेंद्र सूची हैं इसके द्वारा कभी अपने को कष्ट आया हो तो विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, जो विशेष लोग है अपने धर्म में कहा जाता है कि अगर आपको अधिक कष्ट हो तो ये गजेंद्र स्तुति का आप पाठ करो। इस प्रकार भगवान ने उस ग्रह के चंगुल से, ग्रह के कष्ट से गजेंद्र को मुक्त किया। राजा पूछते हैं कि ये जो गज और ग्रह क्या है, पहले तो कहते हैं कि ये जो संसार है यही ये सरोवर है, सुंदर सरोवर देखने में आता है, और जो हमारे जो परिवार हैं, हमारे ये हैं वो हैं, वही संसार के हमारे साथी हैं, और हम संसार में मग्न होकर के उसमें जल पीते हैं, उसमें हम आमोद प्रमोद करते हैं, उसका ध्यान ही नहीं रखते हैं, और वहां पर एक ग्रह छुपा हुआ है ना, संसार में ग्रह छुपा हुआ है। ग्रह क्या है? साक्षात मृत्यु है। ये संसार ही ये सरोवर है। और बोलते हैं कि जो ग्रह कौन है, जो लौकिक रूप से ये ग्रह क्या है, तो कहते हैं कि ये जो ग्रह था, बोलते हैं कि हुहू नाम का एक उस समय ये वो था, क्या नाम है, गंधर्व था, हुहू नाम का गंधर्व था, और देवल ऋषि का किसी प्रकार से अपमानित किया था, श्राप मिला कि जा तो दुष्ट तो ग्रह बन जा, मगर बन जा। उसने कहा कि कोई उपाय, जब चेतना आती है तो उपाय भी पूछते हैं, और संत ऋषि वो समझते हैं कि उसका उपाय बताना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि एक समय आएगा और उस समय भगवान गजेंद्र का संकट दूर करने के लिए आएंगे और उस समय तुम्हारा उद्धार करेंगे। हो नाम का जो गंधर्व था उसकी मुक्ति हो गई। और कहा कि जो गजेंद्र था वो कौन, जो भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति कोई पशु करे, परंतु जो हम लोग हमारे संस्कार होते हैं, हमने अच्छे संस्कार कर किए हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। आप ये नहीं समझना कि हमने कोई सत्कर्म किया हो और हम वो व्यर्थ जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि पता नहीं भगवान कैसा है, हम रोज उसकी पूजा करते हैं, रोज उसको भोग चढ़ाते हैं, रोज उसको माल्यार्पण करते हैं और फिर भी हमारा दुख दूर नहीं करता है, कहते हैं ऐसा हम सोचते हैं। अब दुख कब का है ये पता नहीं ना, हमारे जीवन में कब दुख, हमने कौन सा ऐसा कर्म किया होगा जिस कारण से हमको दुख की प्राप्ति होती है। परंतु भगवान को हम ऐसे गजेंद्र की तरह अगर हम लोग उसकी स्तुति करेंगे तो मुझे लगता है कि भगवान कभी भी दूर कर सकता है, परंतु बाद में जब हमें उसके वास्तविक स्वरूप का पता लगे तब। कहते हैं कि जो गज था वो कौन था, उसके पूर्व जन्म के बड़े सुंदर संस्कार थे और संस्कार ऐसे थे कि वो एक बार वो राजा था, उसका नाम था सुदुम्न। देखा कि राज्य करते करते उसको विचार आया कि ये जो संत महात्मा, ये जो ऋषि है, मुनि है, इनके सब चरणों में नमस्कार करते हैं, इनको सब लोग बुलाते हैं, आदर करते हैं, ये राजा से तो ये साधु बनना अच्छा है। पहले भी ऐसे लोग सोचते थे, अभी आज की बात करना वो ठीक भी नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं कि सब ऐसे लोग होते हैं। देखो कभी कभी बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे सरोवर को गंदा करती है। ये भारतवर्ष कभी भी संतों से, विद्वानों से, ऋषियों से कभी रिक्त नहीं होगा, और जिस दिन रिक्त होगा उस दिन प्रलय आ जाएगा। तब तक इस भारत भूमि पर पुण्यवान लोग रहेंगे, त्यागी लोग रहेंगे, तपस्वी रहेंगे, परंतु कुछ लोग वेशधारी भी रहेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है और बहुत से लोग उधर ही ज्यादा ध्यान देंगे, जो तत्काल दिखता है ना उधर ही ज्यादा ध्यान देंगे, और जो सत्य होता है उधर लोग बोलेंगे वहां तो कुछ नहीं, शास्त्र की बात करते रहते हैं, दूसरी कोई बात ही नहीं, कोई दृष्टांत नहीं, कोई दाखला नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई संकीर्तन नहीं, वहां कोई हास्य नहीं, कोई विनोद नहीं, ऐसा नहीं। जहां विनोद हो, जहां सा बढ़िया संगीत हो, जहां पर खावानो सारू मिले, सत्य बात है। अमेरिका में जहां जहां सत्संग होते हैं ना, वहां पर अगर भोजन न हो तो वहां पर कोई सत्संग में नहीं आता है, क्योंकि उनको घर में जाके बनाने का समय होता नहीं है। तो जिस दिन भोजन, जहां पर भोजन की व्यवस्था होती है वहां पर बड़ी भीड़ होती है, क्योंकि चलो सत्संग भी श्रवण कर लेंगे और साथ साथ में फिर शाम को कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा इस प्रकार का कहते हैं कि परंतु ये देश में, जैसे प्रेमपुरी में नित्य स्वाध्याय और सत्संग होता है, तो स्वाध्याय में भले लोग कम आते हो परंतु यथार्थ है। और एक कहानी किससे सुनने के लिए भरे बड़े बड़े पंडाल लगते हो, वहां केवल वो क्षणिक हैं। जैसे स्वप्न में आप राजा बने और फिर जो है वही है, ऐसी गति है, परंतु यहां पर जो आपका स्वरूप है वही आपको देखने को मिलेगा, उसी का अनुभव होगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसे एक राजा था जिसका नाम सुदुम्न था, उसने की विचार किया कि इस संतों का बड़ा सम्मान होता है, और उसने भी वेश धारण कर लिया, और वेश धारण करने के बाद में वो भी संत जैसी बना, और संत बना करके वो भ्रमण करने लगा और कहीं जाकर के ध्यान लगाता। एक बार की बात है कि एक जगह ध्यान लगा हुआ, ध्यान में बैठा हुआ था, और कोई गलत नहीं है, अगर भगवान का नाम अगर कोई लेता है उसमें किसी प्रकार की कोई गलत नहीं है, वो चाहे कोई भी हो, भगवान का नाम अगर प्रेम से ले रहा है, परंतु कुछ व्यवहार भी होता है। क्या व्यवहार होता है, जब वो राजा बना हुआ जो संत है वो बैठा हुआ है, और वहां पर एक संतों की मंडली आई, ऋषियों की मंडली आई। वहां पर कहते हैं कि एक ऋषि आए और ऋषि को देखा कि वो बैठे हुए हैं, और वो कोई और नहीं, वो अगस्त ऋषि थे, अगस्त मुनि थे। उन्होंने देखा कि ये तो सुदुम्न नाम का राजा है, परंतु ये अपने घमंड में बैठा है कि मैं भी तो संत हूं, इसलिए कोई श्रेष्ठ अपने बीच में आ जाए, उनका सम्मान करना चाहिए। और अगस्त मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि जा, तुम जैसा बैठा हुआ है ना, वैसे ही तुम गज के समान, उस हाथी के समान तुम बैठे रहो। इस प्रकार का जो उनको श्राप प्राप्त हुआ, और फिर वो राजा तो था, संस्कारी था, उसने पुनः उनको प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, भगवान मेरे से भूल हो गई है, जिसका कोई प्रायश्चित आप बताएं। अगस्त मुनि ने कहा कि तुम्हारा जन्म होगा तो होगा, निश्चित रूप से तुम गजेंद्र बनोगे, परंतु वहां पर तुम भगवान को नहीं भूलोगे, भगवान का स्मरण करोगे, और उस समय तुम भगवान की जो स्तुति करोगे तो स्वयं श्री हरि तुम्हारे यहां पर आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये भगवान और अगस्त मुनि ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया, और फिर वहां से ये कथा आती है। किस प्रकार ये कथा आगे चल रही है, और अब राजा पूछ रहे हैं कि भगवान हमने सुना था एक बार कि समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन था उस समय, आप उसका को में रैवत मन्वंतर में, ये मनु की आगे बताएंगे कथा, रैवत मन्वंतर में ये समुद्र मंथन हुआ था वो मैं कथा श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की घटना है, एक बार हमारे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने विचार किया कि चलो हम लोग, मैं वैकुंठ जाता हूं, भगवान का दर्शन करता हूं, और दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में जाने लगे, और वैकुंठ में जाने के लिए उन्होंने पहले अपने घर में पूजा पाठ किया और सुंदर कमल की माला बनाई और भगवान को चढ़ाई। जब हम लोग भगवान को कोई अपना मन से कोई वस्तु चढ़ाते हैं ना, अर्पण करते हैं ना, वो भगवान को प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। दुर्वासा ऋषि ऋषि होने पर भी वो भगवत भक्त थे, वो शंकर का अंश है, फिर भी आराधना करते किसकी, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। वो भेद है ही नहीं संतों में, और हमारे शास्त्र में, हमारे वैदिक सनातन धर्म में कोई भेद ही नहीं है। भेद डाला अपना बाड़ा बनाने के लिए। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि हमारे मानने वाले और दूसरी जगह न जाए, इसलिए उनको तरह तरह की सौगंध दी गई, तरह तरह के वहां पर उनको कहा गया कि तुम वहां जाओगे तो ऐसा होगा, कई बातें हैं। उस समय उन्होंने विचार किया कि मैं ये जाकर के वैकुंठ में जाकर के भगवान का दर्शन करूं, और वैकुंठ में जाने लगे, और वैकुंठ में जाते जाते उन्होंने देखा वहां पर भगवान साक्षात विष्णु भगवान बैठे हुए, वैकुंठाधिपति बैठे हैं, और उनको नमस्कार किया, और देखा कि मैंने जो घर में अपने ठाकुर जी को जो माला पहनाई थी कमल की, वो तो यहां विद्यमान है। जब हम भाव से कोई भगवान को देते हैं तो यहां पर देखा, और बार बार देख रहे हैं कि वो जो माला थी वही लग रहा है कि भगवान के गले में है। ऐसा जब उस समय सोच ही रहे थे, उस समय दुर्वासा जी ने विचार किया, और उस समय भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी जो आप सोच रहे हैं वो वही है ये, इसलिए मैं अब मेरे गले में आ गई है, तो ये मैं आपको प्रसाद रूप से मैं आपको दे देता हूं। भगवान ने वो माला दुर्वासा जी को दे दी, और दुर्वासा जी वहां से आ ही रहे थे, स्वर्ग आए, और स्वर्ग में उनकी भेंट किससे हुई, इंद्र से हुई, संतों के पास में। अब वो उसमें साक्षात लक्ष्मी विराजमान थे उस माला में। तो दुर्वासा जी ने विचार किया कि मेरे तो किसी काम की है ही नहीं, जो राजा है उसके पास में धन होना चाहिए, उसके पास में संपत्ति होनी चाहिए, उसके पास में लक्ष्मी होना चाहिए, तभी तो अपने प्रजा को सुखी कर सकेगा। और इंद्र तो ये तो त्रैलोक्य का वो अधिपति है, वो स्वर्ग का अधिपति है, तो इसलिए ये माला ये इंद्र को देनी चाहिए जिसमें साक्षात लक्ष्मी है। सामने से ऐरावत पर आ रहा था इंद्र, और वो माला दुर्वासा जी ने वो इंद्र को दे दी, परंतु इंद्र ने विचार किया कि इसको उसने उसको कुछ उसका महत्व पता नहीं था, उस माला को उसने अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया और जब उस माला में भौरे गुनगुना रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर भौरे गुनगुना रहे थे, और जब भौरे उस हाथी के कान में जाने लगे तो हाथी परेशान हो गया, उसने ऐसा ऐसा शुरू कर दिया और उसने अपनी गर्दन झुलानी शुरू कर दी और वो माला नीचे पतित हो गई, गिर गई और उस माला पर उसने पैर रख दिया और ये सब दृश्य देख रहे थे दुर्वासा जी। उसने कहा कि तुम मद में तुम अंधे हो रहे हो, तुमको मदांध हो गए हो, इसलिए श्राप दे दिया कि तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, इस प्रकार का श्राप दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि उस समय उसके बाद में कहते हैं कि जब इंद्र के पास से वो लक्ष्मी समाप्त हो गई, उस समय सब हाहाकार लग गया, हाहाकार मच गया और उस समय सब की सब भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि हम लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हमारे वश की अब बात नहीं है, हम लोग चलते हैं भगवान के पास। सब सब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु के पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि आज ये दशा हो गई है, लक्ष्मी लुप्त हो गई है, सब ऐश्वर्य सब लुप्त हो गया है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग जहां पर भगवती जो लक्ष्मी लुप्त हो गई है वहां पर मंथन करो, उसका मंथन करो, परंतु अकेले नहीं कर सकते, मंथन करने के लिए दो टीम होने चाहिए, है ना, दो दल होने चाहिए। कहते हैं कि उस समय उन्होंने कहा कि आप हंत ब्रह्मनो शंभो और सबके सब जो पहुंचे उन्होंने एक उपाय बताया, उपाय ये बताया अरोयोपी संधेना, जैसे कहते हैं कि हाँ एक उदाहरण बताया, ऐसा उन्होंने कहा होगा कि नहीं कहा होगा पर उस शास्त्र में यहां पर लिख दिया है कि आप लोग कुछ युक्ति से काम लो। बोलते एक चूहा और एक सांप एक पिटारे में फंस गए थे, पिटारे में फंस गए थे तो सांप ने कहा कि हे चूहे तो इस पिटारे को तो काट दे, हम लोग दोनों बाहर निकलेंगे। चूहे ने कहा कि मैं काट दूंगा तो हम दोनों बाहर निकलेंगे, तो तुम क्या करने वाले हो ये मुझे पता है, इसलिए उसने कहा कि ऐसा नहीं करूंगा। ये यहां पर उदाहरण देते हैं, तो इसी प्रकार तुम दैत्यों को भी अपने साथ में मिला लो और तुम दोनों मिलकर के उद्यम करो और उद्यम करते हुए तुम लोग समुद्र का मंथन करो और उस वासुकी नाम का सर्प है और जो वासुकी नाम के सर्प को ले लो और हम लोग एक बहुत विशाल पर्वत उसको भी ला करके और उसके द्वारा मंथन करो और बड़ी सुंदर सुंदर वहां पर जड़ी है बूटी है उसके अंदर तुम लोग डालो और फिर मंथन करो, उससे जितने रत्न वहां पर विलुप्त हुए हैं तो सब के सब बाहर आ जाएंगे। और इस प्रकार का लोगों ने उद्यम प्रारंभ किया और जो सुमेरु पर्वत को ले आए और वासुकी को भी, वासुकी को कहा कि हे वासुकी तुम हमारी सहायता करो, जो बाद में जो अमृत थोड़ा बहुत मिलेगा वो हम तुमको भी दे देंगे। अमृत मंथन के लिए देवता और दानव ने दोनों ने ही वहां पर आकर के खड़े हुए। अब वासुकी नाम का सर्प है, भगवान ने पहले इशारा कर दिया कि तुम लोग पहले पूछ की तरफ खड़े होना। भगवान ने कहा कि मुख की तरफ खड़े होना और पूछ पकड़वाना किनको, दैत्य को। कहे कि भगवान इससे क्या होगा लाभ, कहे कि मैं बाद में बताऊंगा। उस समय दोनों ही सुमेरु पर्वत को लेकर के वहां पर मंथन जब करने लगे हैं और उस समय वहां पर पूछ पकड़े हुए हैं वहां पर दानव और मुख पकड़े हुए हैं देवता। देखा कि ये तो मुख की तरफ देवता लगे हुए हैं तो हम तो बड़े हैं ना, हम पूछ क्यों पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा कि हम पूछ नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हम लोग भी कश्यप पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि बात तो सत्य है, आप हमारे बड़े भाई हैं इसलिए आप इस तरफ आ जाओ। और दानव लोग चले गए मुख की तरफ और देवता लोग आ गए पूछ की ओर और फिर मंथन शुरू होने वाला था। मंदराचल पर्वत वहां पर डगमगा रहा था। अब इसको डगमगाया गया तो लोग कुछ लोग वहां पर जाकर के अगर मरी जाएंगे, भगवान ने विचार किया कि अब यहां पर इससे काम नहीं बनेगा, तो वहां पर भगवान ने कश्यप अवतार लेकर के उस मंदराचल के नीचे उन्होंने अपने पीठ पर धारण किया और कहते हैं कि एक भगवान का अवतार यहां भी हुआ। भगवान ने स्वयं वहां पर अवतार ग्रहण किया, कश्यप अवतार, और उस मंदराचल के नीचे जाकर के उन्होंने अपने पीठ पर उसको धारण कर लिया और फिर उसके बाद में वो मंथन प्रारंभ हुआ। जब मंथन प्रारंभ हुआ उस समय बहुत देर के बाद में जब मंथन होते होते वहां पर एक विष प्रकट हुआ और विष प्रकट हुआ, उसको हलाहल विष प्रकट जब हो गया उस समय सब लोगों ने विचार किया था कि हम लोग तो यहां पर आए थे अमृत को प्राप्त करने के लिए और यहां प्राप्त हुआ विष, अब क्या करना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा कि भाई, सब लोगों ने विचार किया कि इसको तुम ग्रहण करो, तुम ग्रहण करो, तुम ग्रहण करो। बोले इस विष को ग्रहण करने वाला केवल एक ही देव है, जो हम लोग उनको महादेव कहते हैं, देवादिदेव, उनके पास चलो हम लोग। तब जाकर के प्रार्थना करने लगे, देव देव महादेव भूतानां भूत भावना। भगवान शिव की तरफ जा रहे हैं, नमः शिवाय नमः नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिवरामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिवरामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः प्रार्थना करनी शुरू कर दी सभी देवताओं ने। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, हे देव आप महादेव हैं, ताही शरणमान त्रैलोक्य दहनात् विषात्। ये विष निकला है, इसको आप हम लोगों की रक्षा करें, इस प्रकार की प्रार्थना लेकर के सभी देवता भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने विचार किया कि ये कार्य तो अच्छा है, परंतु देवी से भी पूछना चाहिए। कहते हैं कि उस समय भगवान ने सती से मंत्रणा की और सती से कहा कि ये जगत को बड़ा कष्ट आया हुआ है, क्योंकि अगर इस विष को कोई नहीं लेगा तो शायद ये संपूर्ण ब्रह्मांड जल जाएगा, इसलिए अपने को क्या करना चाहिए कि इसको मैं धारण करूं। कहते हैं कि विश्रम्भेन आत्मसोचे ने बोला कि ग्रस्त कैसे होना चाहिए, तो भगवान शिव पार्वती सती के पास जाते हैं और सती से कहते हैं कि ऐसा करना ठीक रहेगा, और सती ने अनुमोदन कर दिया कि भगवान सती तो जानती है शंकर जी के ऐश्वर्य को, शंकर जी के जो उनका जो शक्ति है उनको जानती है। उन्होंने कहा कि और भगवान शंकर ने वो विष ग्रहण कर लिया और कुछ उसकी बूंदे कहते हैं कि नीचे गिरी, उनके जो गले में कुछ नाक थे उन्होंने कुछ पा लिया, कुछ और लोगों ने ले लिया, और उसके बाद में वो सब स्वस्थ होकर के वहां पर समुद्र मंथन में लग जाते हैं। और समुद्र मंथन होते होते कहते हैं कि सबसे पहले वहां पर एक कामधेनु नाम की गौ का प्रागट्य हुआ, कामधेनु नाम की गाय निकली। उन्होंने कहा कि किसको दी जाए, ताकि ऋषि है मुनि है वो तो नित्य हवन करते हैं यज्ञ करते हैं, ये उनको दे देनी चाहिए। ये कामधेनु गौ ऋषि को प्रदान की। उसके बाद में वहां से सुंदर वहां पर एक एक अश्व वहां से उत्पन्न हुआ, और उस अश्व को लोगों ने कहा कि भाई किसको देना चाहिए, तो उसने बलि ने विचार किया कि वो मुझे मिले तो ठीक है, तो राजा बलि को उसको प्रदान किया। एक ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसने इंद्र ने ले लिया, तो कौस्तुभ मणि वहां से प्रकट हुआ। ये वहीं से समुद्र से प्राप्त हुए, समुद्र जो है वहां से रत्न प्रकट हुए हैं, और वो कौस्तुभ नाम का जो मणि है वो भगवान विष्णु ने धारण किया। वहां से कल्प वृक्ष निकला, कि कल्प वृक्ष किसी के पास न जाना चाहिए, ये तो स्वर्ग में रहना चाहिए, जो स्वर्ग जिसके पास हो वो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वहां से अनेक अप्सराएं प्रकट हुई, ये कहे कि ये भी स्वर्ग में रहे तो अच्छी बात है। इसके बाद में स्वयं वहां पर भगवती लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ, और जब लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ उस समय उन्होंने सब लोगों ने सोचा कि हमें मिले। सब लोग उसके लिए उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, बड़ी सुंदर यहाँ पर कथा लिखी है, परंतु अपने को आगे बढ़ना है इसलिए थोड़ा सा लक्ष्मी जी की हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और लक्ष्मी जी ने तो उसी को वरण किया जो जिसकी है, वो लक्ष्मी किसकी है, नारायण की है, और नारायण को स्वयं वरण कर लिया। और उसके बाद में पुनः सुंदर वहां पर समुद्र मंथन का कार्य हुआ, और समुद्र मंथन करते करते वहां से एक अलौकिक पुरुष का वहां पर प्रादुर्भाव हुआ, और वो धन्वंतरी थे, और धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के बाहर आ जाते हैं। एक धन्वंतरी जी का यहाँ पर अवतार हुआ, और उस समय सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर अमृत कलश निकल आया है। वहां पर सबसे पहले दैत्य ने उसको छिनना शुरू कर दिया, देवता भी लगे, दैत्य ने उसमें हाथ ले लिया और उसको लेकर के उस कलश को लेकर के घूमते रहे। वहां पर जयंत नाम का जो एक उनका पुत्र है इंद्र का, वो लेकर के उसको लेकर के भागा, और वहां पर कहीं छुपाता गया कहीं रखता गया, इसलिए कहते हैं कि उसने चार जगह उस कलश को रखा, और जब रखा होगा तो एक आध बूंद वहां पर गिरी होगी, थोड़ा सा अमृत गिरा होगा, इसलिए अभी तक उस स्थान पर हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुंभ। कहां कहां, प्रयाग गया, हरिद्वार गया, उज्जैन गया, और अपने नासिक नाजिक बाजू में भी, अपने नासिक में भी वो कलश आया, और वहां पर देखा फिर दैत्यों का और फिर वहां पर फिर छिना झट्टी हुई, उस कलश के कुछ बूंद वहां पर गिरे और उसके बाद में विचार किया कि अब इसको क्या किया जाए। तो सब वो जब तो वहां पर एक सुंदर स्वरूप धारण कर लिया भगवान ने, उसका नाम है बोलते मोहिनी अवतार ग्रहण किया। और मोहिनी अवतार ग्रहण करने के बाद में वहां पर जब आई सामने, उन्होंने कहा कि हे देवता और देवी दैत्यो, तुम लोगों का एक काम करो। दैत्यो ने कहा कि ये तो आप ही कर सकती हो, परंतु भगवान ने पहले से चिताया कि देखो मैं श्री हूं, मेरा विश्वास नहीं करना। मैं यहां लिखते हैं कि मैं, क्योंकि पहले से बतला देते हैं कि मेरा विश्वास नहीं करना। उसने कहा कि जो बोलता है कि मेरे पर विश्वास नहीं करना, उसमें तो पूर्ण विश्वास है। कहा कि आप पर हमारा पूर्ण विश्वास है और आप हमारा ये कार्य करें। और मोहिनी रूपी बनी हुई भगवान ने कहा कि ऐसा करो, अमृत ऐसा नहीं किया जाता है, उसके लिए पहले स्नान किया जाता है। जाओ स्नान करने आओ, स्नान करके एक दिन का उपवास करो और फिर बैठ करके तुम लोग एक पंक्ति लगा करके भोजन करो। ऐसा नहीं जैसे बुफे सिस्टम होता है वैसा ये अमृत मिलने वाला नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो अमृत तो नहीं है, वो भोजन होता है वो केवल संतुष्टि के लिए होता है, परंतु अमृत है। अमृत तो प्राप्त करने के लिए अगर आपको अमृत पीना है, उसको पान करना है, तो पहले पंक्ति लगाओ। और पंक्ति लगाने के बाद में कहा कि दूसरे दिन मैं उस अमृत को तुम लोगों को परोसूंगी। उस समय सब लोगों ने मोहित हो चुके थे, सबकी वहां पर पंक्ति लगी है। और भगवान तो देवताओं के कार्य के लिए आते हैं, और उन्होंने उस समय देखा कि वहां पर पंक्ति लगी हुई है, और उन्होंने कहा कि पंक्ति लगने के बाद में आंखें बंद करके बैठना। अब मोहित हुआ व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सब लोग बैठे हुए हैं और पंक्ति लगी, और पंक्ति लगने के बाद में भगवान ने वो अमृत परोसना शुरू कर दिया, और सभी देवताओं की आंखें बंद हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक पत्तल खाली है, कुछ आ नहीं रहा है। उसमें से एक राहु नाम का एक वहां पर ग्रह था, उसने विचार किया, उसने एक आंख खोली, उसने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अमृत तो परोसा जा रहा है। और धीरे से उठ करके वो आया, किस पंक्ति में, देवताओं तक की पंक्ति में आया। और देवताओं की पंक्ति में आते ही अभी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर नहीं हुआ था, उसके पहले ही उसने वो अमृत पीना शुरू कर दिया। और चंद्र और सूर्य वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि ये हमारा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे यहां पर पंक्ति लगने के बाद में सबके साथ भोजन होता है, ओम नमः पार्वती पति बोलते ना सबके लिए। कहा कि अपना तो लगता नहीं। उसने सूर्य और चंद्रमा ने थोड़ा सा इशारा किया कि ये अपना नहीं है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका शिरच्छेद कर दिया, परंतु तब तक उसका अमृत अंदर चला गया था, इसलिए उसके दो भाग हो गए, एक हुआ राहु और दूसरा हुआ केतु। और उसके बाद में उसने कहा कि ऐसा हो गया, तब तक तो देवता भी अमृत पी चुके थे, और उस समय जब देवताओं ने अमृत पी लिया और दैत्य को जब अमृत नहीं मिला, उस समय घोर युद्ध हुआ। और घोर युद्ध होने के बाद में उस समय देवताओं ने दैत्यों को परास्त किया, और परास्त करने के बाद में ये बलि को ठीक नहीं लगा, और बलि को उस समय लगभग परास्त करके उसको मार ही दिया था। परंतु शुक्राचार्य जी ने एक बहुत सुंदर बड़ा एक यज्ञ वहां पर यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में बलि को जीवित किया। संजीवनी विद्या का जो विद्यार्थी वो शुक्राचार्य जी के पास में थी, उन्होंने पुनः बलि को जीवित किया, और फिर बलि को सुंदर सुंदर शस्त्र प्रदान किए, उनको रथ प्रदान किया। और उसके बाद में पुनः एक युद्ध हुआ, और वो बड़ा भारी संग्राम हुआ, और संग्राम में फिर वहां पर सभी के सभी देवता परास्त हुए। जब देवता परास्त हुए, उस समय देवता इधर उधर भटकने लगे। जैसे दीति ने उस समय कहा था कश्यप ऋषि को कि मुझे इंद्र को मारने के लिए ऐसा कुछ पुत्र हो, वैसा आप उपाय बताएं, व्रत बताएं। और यहां पर अदिति भी कश्यप ऋषि के पास जाती है, और कश्यप ऋषि के पास जाकर के बोलती है कि हे भगवान, मेरे पुत्रों का राज्य हरण हो गया है, उसके प्राप्ति के लिए कुछ आप ऐसा उपाय बताएं, ऐसा कुछ उपाय करे जिससे हमारे पुत्रों का राज्य उनको वापस मिल सके। अंतर है दोनों में, दीति और अजीत ये वर मांगने में अंतर है। एक कहती है कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, दूसरी कहती है कि हमारे पुत्रों का जो धन है, ऐश्वर्य है, वो उससे च्युत हो गए हैं, उनको पुनः उनकी प्राप्ति हो। कश्यप ऋषि ने वही पयोव्रत 12 दिन का उपवास बताया और 12वें दिन उस समय कहते हैं कि उसी समय भगवान वहां पर, भगवान ने विचार किया कि अब शीघ्रता से वहां पर प्रकट होना चाहिए और भगवान ने विचार करते करते वहां पर विचार करके और वहां पर अदिति के गर्भ में भगवान का प्रवेश हो जाता है और भगवान का प्रवेश होने के बाद उस समय भगवान की वहां पर स्तुति होने लगते हैं और भगवान की स्तुति करते समय सभी देवता आते हैं और देवताओं ने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर ली है और उस समय भगवान का जन्म होने वाला है। भगवान वामन अब अवतरित होने वाले हैं। श्रोणायाम श्रवणम द्वादश्याम, भगवान वामन का थोड़ा सा सामान्य पूजन करें। श्रोणायाम श्रावण द्वादश्याम मूर्ति विजितः प्रभु, समय भाद्रपद की वहां पर द्वादशी है और उस दिन भगवान का वहां पर प्रागट्य हुआ है और जब भागवत का प्रागट्य हुआ उस समय वहां पर देवताओं में बड़ा उत्साह हो गया और उस समय उनका यज्ञ पवित आगे संस्कार हुआ और उस समय यज्ञ पवित संस्कार होने के समय में उनको साक्षात सावित्री है जो गायत्री माता है उन्होंने यज्ञ पवित प्रदान कर दिया है और बृहस्पति जो साक्षात गुरु के देवताओं के गुरु हैं उन्होंने उनको यज्ञ पवित दे दिया है और उनके जो पिता हैं कश्यप ऋषि उनको उन्होंने मेखला दी है और चंद्रमा जो वनस्पतियों के जो स्वामी हैं उन्होंने उनको दंड दिया है, अदिति माता ने उनको कोपिन दी है इस प्रकार का और ब्रह्मा जी उनको कमंडल दे दिया है और सप्तऋषियों ने उनको कुशासन दे दिया है और साक्षात सरस्वती ने उनको एक माला दी है और कुबेर ने उनको पात्र दिया है और भगवती जो पार्वती हैं उन्होंने उनको दीक्षा दी है। जब ब्राह्मण बालक का जब यज्ञ पद संस्कार होता है उनकी विधि होती है उस समय भिक्षा के लिए और भिक्षा देने के लिए पार्वती स्वयं वहां पर उन्होंने उपस्थित होकर उनको दीक्षा दी है और परंतु अब भगवान के सामने पास में ज्यादा समय नहीं है। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, नर्मदा के तट पर राजा बलि का यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली है और 100 अश्वमेध यज्ञ करने हैं इस प्रकार की दीक्षा ली है और वहां पर भगवान वामन उधर चलते हैं। कहा
विष्णु वामन भय चालिया रे, 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 वटाड़वान बीजो इंद्र मारवाला, वटाड़वान बीजो इंद्र मारवाला, वटाड़वान बीजो इंद्र मारवाला, वटाड़वान बीजो इंद्र मारवाला, विष्णु वामन भय चालिया रे, विष्णु वामन भय चालिया रे, श्वेत छत्र शिर धयो रे, श्वेत छत्र शिर पर धयो रे, कर्मा कमंडन कारवारवाला, हे कर्मा कमंडन कारमारवाला, कर्मा कमंडन कारमारवाला, कर्मा कमंडन कारमारवाला, विष्णु वामन भय चालिया रे, विष्णु वामन भय चालिया रे। चर्म काखमा शोभ दूरे
वेद चर्म काखमा शोभ दूरे
त्रिपूर्ण भाले विशाल मारवाला
त्रिपूर्ण भाल विशाल मारवाला
त्रिपूर्ण भाल विशाल मारवाला
त्रिपूर्ण भाल विशाल मारवाला
विष्णु वामन थे चालिया रे
विष्णु वामन बलि
गर्भवाल जगावतारे यज्ञो पवितना दान मारवाना
यज्ञो पवितना दान मारवाला
यज्ञो पवितना दान मारवाला
यज्ञो पवितना दान मारवाला
विष्णु वामन थे चालिया रे
विष्णु वामन थे चालिया रे
सरस्वती हार आरोप तारे
सरस्वती हार आरोप तारे
सरस्वती हार आरोप तारे
सरस्वती हार आरोप तारे
अने माता फिर से थे पकवान मारवाला
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 करुणा सिंधु क्या डालिया रे
करुणा सिंधु क्या डालिया रे
अरे करुणा सिंधु क्या डालिया रे
करुणा सिंधु क्या डालिया रे
अधूरी मम आश मारवाला
अधूरी छे अब आश मारवाला
अधूरी छे मम आश मारवाला
अधूरी छे अब आश मारवाला
विष्णु वामन थे चालिया रे
विष्णु वामन थे चालिया रे
कछवाहो जाव छोरे
प्रभु कछवाहो जाव छोरे
प्रभु कछवाहो जाव छोरे
प्रभु कछवाहो जाव छोरे
भड़वा बलिनो अभिमान मारवाला
भड़वा बलिनो अभिमान मारवाला
भणवा बलिनो अभिमान मारवाला
भणवा बलिनो अभिमान मारवाला
इंद्र क्रोध तो अटकावियो रे इंद्र तो अटकावियो अरे इंद्र तो अटकावियो रे इंद्र तो अटकावियो रे एना जीवराज पीतांबर गुण गाय मारा वाला जीवराज पीतांबर गुण गाय मारा वाला विष्णु वामन पै चालिया रे विष्णु वामन पै चालिया रे अर बटाड़ वाने बीजो इंद्र मारा वाला 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 विष्णु वामन पै चालिया रे विष्णु वामन सही चालिया रे विष्णु
वामन भगवान की
जय। देवताओं के कष्ट को हरण करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। शीघ्रातिशीघ्र उनके जातकर्मादि हुए, यज्ञ पर संस्कार हुआ और जहां पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था वहां पर भगवान वामन पदार्थे छत्र हैं, कमंडल हैं, खड़ाव हैं, ऐसा सुंदर वेश बना करके वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं। यज्ञ मंडप में बलि वहां पर यजमान बनकर बैठे हुए हैं और राजा बलि ने देखा कि एक सुंदर बालक जिसका अद्भुत स्वरूप है, भगवान ने स्वरूप धारण कर लिया हो तो कितना अद्भुत स्वरूप, त्रिलोक के सुंदर, ऐसे भगवान यज्ञ मंडप में पहुंच जाते हैं और बलि कहता है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, भगवान का स्वागत किया है। ब्रह्मन किम करवाम ते, मैं आपके लिए क्या करूं, आपके लिए कौन सा स्वागत करूं, ऐसा आप लगता है कि आप मूर्तिमंत अब साक्षात पर ब्रह्म आप स्वयं यहां पर बता रहे हैं, जैसे ऋषियों ने कोई तपस्या की हुई और तपस्या के बल पर स्वयं ज्योति प्रकट हुई हो, जिस प्रकार आपका स्वरूप है, इस प्रकार वहां पर आए और मैं आपको क्या दूं, यहां तो बहुत विस्तार से लिखा है परंतु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं कि आप जो मांगना चाहे मांगे। बटुक ने कहा कि हे राजन, आप तो त्रिलोक्य के आप राजाधिराज हैं, आप तो कुछ भी दे सकते हैं परंतु मुझे तो केवल मेरे काम भर की मुझे केवल तीन पग भूमि चाहिए। कि हे बालक, अभी तुम तो छोटे हो, कुछ और मांगो, तुम राज्य मांगो, शासन मांगो, तुम और भी बड़ी बड़ी कुछ बात कहो। और यहां पर बहुत से उनको प्रलोभन देने का कहा कि नहीं राजन, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए और उनसे कि तीन पद ही हमें पर्याप्त हैं। और राजा ने कहा कि अगर तुम्हारी जो इच्छा कहे कि मैं जहां पर रह करके आराम से शांति से वेद की ऋचाओं का अध्ययन कर सकूं, वेद मंत्रों को बोल सकूं, इसलिए इतना ही मुझे चाहिए। राजा ने कहा कि हे बालक, और कुछ मांगना हो तो मांग लो, बोलो इतना ही। और उस समय राजा बलि ने अपने हाथ में कमंडल लिया और कमंडल लेने के बाद में उन्होंने जैसे ही उनको वचन देने लगे, संकल्प करने लगे, उस समय उनके आचार्य थे उस समय शुक्राचार्य, उन्होंने कहा राजन, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में जो दान देना चाहिए ये उन्होंने शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो आप दान देते हैं उसमें लोग चार लोग पांच लोगों का भाग होता है। एक बोलते हैं कि एक आपके पास में जो धन है, धर्माय विशेषार्थ कामाय सुजनाय च, कहते हैं कि एक भाग धर्म के लिए होना चाहिए, एक भाग से आप धर्म को करें, एक भाग से आप यश को बढ़ाए, एक भाग आपके अपने स्वजनों को देना चाहिए, एक भाग अपने लिए रखना चाहिए और एक भाग अपने धन को और धन कमाने के लिए रखना चाहिए, इस प्रकार का चार भाग करना चाहिए। और आप तो सर्वस्व दान देने के लिए यहां पर, ये तो साक्षात विष्णु आया है, ये तो आपका सब कुछ छीन लेगा, और कहते हैं कि वहां पर बलि राजा बलि बोलते हैं कि मैंने जो ये संकल्प किया है, मैंने वचन दिया है, इसको मैं वापस नहीं ले सकता हूं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कुछ वचन ऐसे हैं जहां पर हमें झूठ बोलने में वहां पर ऐतराज नहीं होना चाहिए, वहां पर झूठ बोलने से बहुत पाप नहीं लगता है। कोई गौ ब्राह्मण हिंसा में कोई जाता हो उसके लिए झूठ बोले, कोई किसी का विवाह हो रहा हो उसमें विवाह में कोई झूठ बोलना भी थोड़ा सा चल जाता है। इस प्रकार राजा बलि ने कहा कि नहीं, अब मैंने जो भी संकल्प किया है उसको मैं पूर्ण करूंगा। और राजा बलि ने उस समय संकल्प के लिए अपना कमंडल उठाया और कमंडल उठाने के बाद में उन्होंने संकल्प जैसे ही संकल्प किया उसी समय वामन ने विराट स्वरूप को धारण कर लिया है। और विराट स्वरूप धारण करने के बाद में एक पग से तो संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया है। सब लोग वहां पर देखने लगे कि दैत्य लोग, ये तो विष्णु ही है साक्षात हमारे राजा को छलने आया हुआ है। और उस समय भगवान ने एकाएक उसने स्वरूप धारण कर लिया और दूसरा पग ब्रह्मलोक तक चला गया। और जब ब्रह्मलोक तक चला गया उस समय ब्रह्मा जी वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि ब्रह्मलोक में कोई भगवान आते नहीं, आज भगवान का चरण यहां पर आया हुआ है। और ब्रह्मा जी तुरंत निकले और वहां से कमंडल से भगवान का वहां पर चरण प्रक्षालन किया है। और चरण प्रक्षालन करने के बाद में उन्होंने वहां पर चरणामृत लिया है और जो बाकी शेष जल बचा था वो वहां मृत्यु लोक में आता है और उसी को हम लोग गंगा कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, वही जल है, भगवान का चरणामृत है वो। और वापिस आया और उसके बाद में फिर पुनः अब दो पग में ही संपूर्ण विश्व को उन्होंने व्याप्त कर लिया। अब कहे कि अब हे बलि तीसरा पद मैं कहां रखूं। राजा बलि ने कहा कि भगवान तब तक उनको नागपाश में बांध लिया, कहा कि अब तीसरा पग मैं कहां रखूं। राजा बलि ने कहा कि हे भगवान मैं बलि हूं ऐसा मैं मानता हूं, मैं एक जीव हूं ऐसा मैं मानता हूं, कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं नहीं, मेरे में अभिमान है कि मैं एक बलि हूं, दैत्य हूं, इसीलिए वो मेरा अपना है। अहंकार किसका है? वो अहंकार मेरा अपना है, इसलिए मैं बलि रूप से ये आपको निवेदन करता हूं कि आपका जो तीसरा जो पग है, तीसरा चरण है, मेरे आप मस्तक पर रख दो। भगवान उस विराट से पुनः बालक हो जाते हैं, पुनः वो वामन रूप धारण करते हैं और अपना कोमल कोमल चरण उस बलि के, क्योंकि जब बलि ये भक्त बन करके भगवान की प्रार्थना करता है और भगवान ने उनको अनुग्रह करने के लिए अपने चरण को उनके मस्तक पर रख दिया। और हे बलि राजा यहां से जाकर के जाओ सुतल लोक में चले जाओ और वहां अपना राज्य करो, वहां तुमको मैं हमेशा तुम्हारे सामने में रहूंगा। इस प्रकार बलि को वहां से सुतल लोक में भेज दिया, सुतल लोक की यात्रा हो गई। और उसके बाद में ये जो उस समय का काल धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, उस समय एक सत्यव्रत नाम के एक बहुत बड़े राजा थे द्रविड़ देश में। और उस समय एक दिन पूर्ण होने जा रहा था ब्रह्मा जी का, और जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है उस समय एक प्रलय आता है। और उस समय जो प्रलय काल में उस समय ब्रह्मा जी को थोड़ी सी निद्रा आने लगी थी, उसी समय भगवान ने विचार किया कि मुझे इस संसार की रक्षा करनी है, इसलिए भगवान ने एक मत्स्यावतार ग्रहण किया। और जब निद्रा आ रही थी उस समय जब हयग्रीव नाम का एक राक्षस था, उसने वेदों को चुरा करके वो उस समुद्र में लुप्त हो गया। और उस समय एक भगवान ने उस समय भी अवतार लिया और उसके बाद में भगवान ने एक मत्स्य का अवतार लिया, मछली का स्वरूप धारण करके उस काल में भगवान ने सप्त ऋषियों की, संपूर्ण धान्यों की, संपूर्ण शास्त्र की वहां पर रक्षा की। और वहां पर मत्स्यावतार धारण करके पुनः हम लोगों के लिए इस जगत में हम लोग आए हैं। उस कल्प की हम लोग बाद में पुनः चर्चा करेंगे, कब? सायंकाल। और भगवान साक्षात परब्रह्म, पूर्ण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा, उनसे पूर्व गंगा अवतरण होगा, उससे पूर्व भगवान श्रीराम का प्रागट्य होगा। और शाम को बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग भी समय पे आना, हम लोग भी समय पे आएंगे, और समय से थोड़ा सा बहुत आगे भी होगा, तो आप जानो अपना काम जाने, मैं अपनी कथा समय से प्रारंभ करूंगा और समय पर पूर्ण करूंगा। उसके बाद आपको उत्सव जैसे मनाना हो वैसे मनाता है ना। श्रीमन नारायण नारायण
कृष्ण कन्हैया की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। प्रेमपुरी जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव हर। जीवो छो रसीला
सद्गुणनाथ महाराज
ज्ञान ज्योति।
अभी ब्राह्मण गण निवृत्त होकर 10:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाए। ब्राह्मण वृंद से निवेदन है निवृत्त होकर 10:30 तक पहुँच जाए।
मुखड़ान ज्योति जीवो छो रसीला मुखड़ान ज्योति। ऐडाला हार प्यारा नथड़ी नमोती भैया नार प्यारा नथड़ी नमोती। जीव जो रसीला तारा मुखड़ान ज्योती। जीव जो रसीला तारा मुखड़ान ज्योती। नटवर निर्थी तूने अंतर खरे छे नटवर निर्थी तूने अंतर खरे छे। दूरी जन लोक घोड़ा दाजीने मरे थे। दूरी जन लोक घोड़ा दाजीने मरे थे। जीव चोर जिला तारा मुखड़ान ज्योति। सूरतीला तारा मुखड़ान ज्योति।
मन कर्म वचने हो भैरहि तारे, मन कर्म वचने हो भैरहि तारे। मुखड़ाओं पर जाए ब्रह्मानंद वारे, मुखड़ा ऊपर जाए ब्रह्मानंद वारे। जीवो जो रसीला तारा मुखड़ा ने ज्योति, जीवो जो रसीला तारा मुखड़ा ने ज्योति।